समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
एक सोच है जागी जागी धरती के लिए, एक जोत है जागी जागी प्रकृति के लिए। ओ, 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 नदिया पर्वत सागर बादल चारों दिशाएं बहती गाती मधुमाती ये अल्लड़ हवाएं। बल खाती आती तरंगे ये लहरें किनारे, चमके पेड़ पत्ते बूंदे झिलमिल सितारे। तूने जो बताया हो हाँ, पोया तो फल पाया हो हाँ।
सुप्रभात, नमस्कार। गीतकार और संगीतकार कैलाश खेर के लिखे इस गीत से आगाज करते हैं कार्यक्रम आज सवेरे का। देश भर में आज विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। बढ़ता प्रदूषण हो या जलवायु परिवर्तन की चुनौती, जंगलों की कटाई और घटते प्राकृतिक संसाधन, ये सब संकेत है कि अब जागने का समय आ गया है। और पृथ्वी दिवस हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ इस ग्रह के निवासी नहीं बल्कि इसके रक्षक भी हैं।
Yes, Farhat, on this beautiful Wednesday morning, we also celebrate International Mother Earth Day. That's what you talked about. And of course, the day is to focus on the responsibility to rebuild our troubled relationship with nature. It recognizes that Earth and its ecosystems are our home. And why are we doing it today? Because it was proclaimed by the UN General Assembly in 2009. The day, of course, focuses on tackling environment issues like climate change, plastic pollution, deforestation and so many other things. So, Farhat, let's come together and make this land a better place.
जी बिल्कुल सुभद्रा, आइए इस प्रण के साथ कि हम पृथ्वी को सुंदर और साफ रखेंगे कार्यक्रम का आगाज।
Yeah, and also keep this in our mind that it is not just for today we remember our dear planet. It's a lifelong project to keep Mother Earth clean, green and happy. Yes, so let's start with some news headlines.
जी बिल्कुल, मैं हूँ आपके साथ फरहत नाज और मेरे साथ हैं सुभद्रा रामचंद्रन। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत सह निर्माण, सह विकास और सह नवाचार के लिए खुला निमंत्रण है। उन्होंने भारत और जर्मनी के रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। जर्मनी की अपनी 3 दिन की यात्रा के पहले दिन जर्मन संसद की रक्षा और सुरक्षा समिति को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया आज नई सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रही है और तकनीकी बदलावों ने हालात को और जटिल बना दिया है। उन्होंने बदलते माहौल के अनुसार नए सोच अपनाने की जरूरत पर बल दिया।
In Tamil Nadu, polling will be held in a single phase for all the 2,234 assembly constituencies in the state tomorrow. Our correspondent reports that there are over 5,73,43,000 voters in the state, and the first phase of polling for West Bengal assembly elections will be held in 152 seats covering 16 districts tomorrow. Our correspondent reports that 1,478 candidates are contesting the elections in this phase.
और सुभद्रा, आज ही के दिन एक जघन्य घटना को अंजाम दिया गया था। आज जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की पहली बरसी है। पिछले वर्ष इसी दिन पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 निर्दोष लोगों को, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे, हत्या कर दी थी। इस जघन्य कृत्य ने पूरे देश को झकझोर दिया था और दुनिया भर की सरकारों तथा नेताओं ने इसकी कड़ी निंदा की थी। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में आतंकवादियों को चेतावनी देते हुए संदेश साझा किया है कि जब मानवता की सीमाएं पार की जाती हैं तो जवाब निर्णायक होता है। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों ने पिछले साल 6 और 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर भी शुरू किया था। और ब्यूरो के साथ है हमारे संवाददाता।
ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए लक्षित हमलों में पाकिस्तान और POJK में 9 आतंकवादी शिविरों को सटीक रूप से निशाना बनाया गया, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी, उनके प्रशिक्षक, संचालक और सहयोगी मारे गए। अधिकांश आतंकवादी जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंधित थे। इस ऑपरेशन ने भूमि, वायु और समुद्र के माध्यम से उच्च सटीकता और समन्वित सैन्य कार्रवाई के जरिए भारत की उत्कृष्ट क्षमता को प्रदर्शित किया। ऑपरेशन सिंदूर को भारत के रक्षा इतिहास में एक निर्णायक क्षण के रूप में याद किया जाएगा। यह सैन्य सटीकता, अंतर सेवा सहयोग और राष्ट्रीय संकल्प का प्रतीक है। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
US President Donald Trump has said that he will indefinitely extend the ceasefire with Iran to allow the two countries to continue peace talks to end the war. The announcement came as two-week truce was set to expire this morning. In a Truth Social post, Trump said that he is making the move at Pakistan's request. However, he also said he would continue the US Navy's blockade of Iran's ports and shore, which Iran's leaders have called an act of war. He said the blockade of Iranian ports will continue until Tehran presents a unified proposal.
वहीं केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए आज खुल जाएंगे। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग के जिला मजिस्ट्रेट विशाल मिश्रा ने बताया कि प्रशासन ने यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए कल खोल दिए जाएंगे। जिला और पुलिस प्रशासन ने सुचारू और सुरक्षित तीर्थ यात्रा के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं।
South Africa will take on India in the third T20 International of the five-match series at the Wanderers Stadium in Johannesburg today. The match will begin at 9:30 p.m. IST. The Proteas women have started the series strongly, winning the first two matches.
और बात आईपीएल क्रिकेट की, कल रात हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 47 रन से हरा दिया। सनराइजर्स हैदराबाद के 243 रन के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली की टीम 9 विकेट पर 195 रन ही बना सकी। अभिषेक शर्मा को उनके नाबाद 135 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। लखनऊ में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा।
And as part of our series, People's Padma on Akashvani, in an upcoming episode, we speak to Dr. Punyamurthy Natesan, a noted veterinary pharmacologist. He will be honored with the prestigious Padma Shri.
India becoming an organic hub in food production is a reality. I've been working for the last 25 years on traditional Siddha-based ethno-veterinary medicine to counteract some of the issues affecting the livestock production in India.
To listen to the conversation, tune in to 100.1 Akashwani Gold today evening at 5:10 p.m. You can also listen to it on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. It will also be broadcast tomorrow morning at 9:10 a.m.
और श्रोताओं, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। रुख करते हैं चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के समाचारों का। तो सुभद्रा, चेन्नई में क्या है खास?
यस, स्टार्टिंग विद न्यूज़ फ्रॉम चेन्नई, फरहत, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कमेंस द सेकंड फेज ऑफ इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम फॉर द ऑन गोइंग असेंबली इलेक्शन इन तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। 34 delegates from 17 countries, including representatives from their foreign missions in Delhi and a representative from International IDEA, will be participating in the program. The participants will visit both the states from 22nd April to 23rd April. The delegates will be visiting the dispatch and distribution centers and other facilities, including the district control rooms and the media monitoring centers, other facilities, including the district control rooms and the... I beg your pardon... They will also witness the actual polling. Going over to Bengaluru now, Karnataka reinforced its position as a Global Capability Center, GCC, with the standard opening of a new Global Capability Center in Bengaluru. The facility located at Embassy Tech Village was inaugurated by Priyank Kharge. The center will drive AI, cloud, data and digital transformation initiatives, marking a key step in the company's India expansion since November 2025. Karnataka, led by Bengaluru, continues to attract global firms with its strong talent pool, policies and innovation ecosystem. We have another one from Bengaluru. Our lives have changed forever. I cannot fill the void his loss has left, says Dr. Sujata, wife of Bharat Bhushan, 41, a Bengaluru resident killed in last year's Pahalgam terror attack. Witnessed by his wife and young son, his death continues to haunt the family. More than a year later, Dr. Sujata avoids discussing the tragedy and stays away from social media, focusing on raising a son with the support from family. Bharat's parents remain deeply affected, struggling to cope with the loss, while his brother says the family is still trying to adjust to life without him. Quite sad, right? and moving on to Hyderabad now. Tourism, Culture and Excise Minister Jupali Krishna Rao has termed the recognition accorded to Telangana in the Divya Bharat Tourism Report released by Niti Aayog as a proud moment, noting that it highlights the state's diverse tourism strengths. It is a proud moment for Telangana to be featured in the Divya Bharat report by Niti Aayog, which highlights the state's diverse tourism strength, the minister said. The minister noted that attractions such as Hussain Sagar, Golconda Fort and Bhongir Fort, along with spiritual centres like Yadadri Temple and Bhadrachalam Temple, continue to attract visitors. He added that natural attractions such as Kuntala Waterfall and Bogatha Waterfall, vibrant festivals like Samakka Saralamma Jatara and traditional crafts including Pochampalli Ikat, further enhance the state's tourism appeal. Over to you now for Farhat for rest of the news.
जी सुभद्रा, सबसे पहले राजधानी दिल्ली के समाचारों का रुख कर लेते हैं. दिल्ली पुलिस ने रिटायर होने वाले कर्मियों के लिए लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट विषय पर दो दिनों तक चलने वाली कार्यशाला का आयोजन किया. पुलिस मुख्यालय में आयोजित इस कार्यशाला का समापन पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा ने किया, जिसमें लगभग 700 से अधिक कर्मियों ने भाग लिया. इसमें वित्तीय योजना, निवेश, स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और रिटायरमेंट के बाद रोजगार के अवसरों पर विशेषज्ञों ने मार्गदर्शन किया. वहीं दिल्ली स्थित राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में आज विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाएगा. इस वर्ष का विषय है हमारी शक्ति हमारा ग्रह, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को रेखांकित करता है. संस्कृति मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत विज्ञान व्याख्यान अंटार्कटिका अन्वेषण श्वेत महाद्वीप की यात्रा से होगी. इस व्याख्यान में अंटार्कटिका से जुड़े वैज्ञानिक पहलुओं और रहस्यों की जानकारी दी जाएगी. व्याख्यान के उपरांत विद्यार्थियों के लिए ओपन हाउस क्विज प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसका उद्देश्य पर्यावरण विज्ञान और जैव विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ाना और वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करना है. और अब मुंबई का रुख कर लेते हैं. भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति ने आज आगामी राजनीतिक चुनावों से पहले युवाओं और प्रमुख मतदाता समूहों को लामबंद करने के उद्देश्य से एक व्यापक राज्यव्यापी जनसंपर्क अभियान युवा शक्ति जागृत यात्रा की शुरुआत की. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा उद्घाटन किए गए इस कार्यक्रम की शुरुआत कोंकण क्षेत्र से होगी और फिर ये पश्चिमी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ तक विस्तारित होगा. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के समारोह के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र सरकार के सांस्कृतिक विभाग और महाराष्ट्र फिल्म रंगमंच और सांस्कृतिक विकास निगम ने राष्ट्रव्यापी पीएम विजन टू आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया. सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार ने पूला देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी में आयोजित एक कार्यक्रम में 75 विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए. 20 सितंबर से 10 नवंबर के बीच आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत भर से विभिन्न आयु वर्ग के लगभग 3000 प्रतिभागियों ने भाग लिया. और अब पश्चिम बंगाल का रुख करते हैं. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के लिए उत्तर 24 परगना के दमदम में रैली करेंगे. श्री शाह हावड़ा तथा हुगली के सप्तग्राम में जनसभाओं को संबोधित करेंगे. वे शाम को सोनारपुर में एक रोड शो भी करेंगे. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हावड़ा के जोराजांगको, चकदाहा और उदय नारायणपुर में रैलियां करेंगे. असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा कालना और बोगांव दक्षिण में जनसभा करेंगे. वे वर्धमान में एक रोड शो में भी भाग लेंगे. श्रोताओं, अब आगे बढ़ते हैं और महानगरों के मौसम का हाल जान लेते हैं. तो सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की. आज दिन भर धूप खिली रहेगी और लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है. अधिकतम तापमान में और बढ़ोतरी होगी, 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. मुंबई में आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा और बिजली कड़कने की संभावना है. न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. कोलकाता में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.
Chennai is expected partly cloudy sky. The minimum temperature will be around 27 degrees Celsius. Maximum will be around 36 degrees. Bengaluru is expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature is expected to be 23 degrees Celsius and maximum will be around 36 degrees. Hyderabad is expected to have fog or thunderstorm with rain. The temperature will hover between a minimum of 25 degrees Celsius and a maximum of 37 degrees Celsius.
और श्रोताओं, आज है 22 अप्रैल, तो आइए वक्त हो चला है इतिहास के पन्नों को पलटने का. तो सुभद्रा, सबसे पहले इतिहास में क्या है खास?
1500, Pedro Alvarez Cabral became the first European to officially reach Brazil, marking the beginning of Portuguese influence in South America.
सन 1836 में सैन जेसिंटो की लड़ाई एक निर्णायक जीत के साथ समाप्त हुई, जिससे मेक्सिको से टेक्सास की स्वतंत्रता सुरक्षित हुई.
1864, the Coinage Act of 1864 was passed, allowing the phrase "In God We Trust" to appear on U.S. coins.
1906 में एथेंस में इंटर कैलिडेटेड ओलंपिक खेल शुरू हुए, जिसने आधुनिक ओलंपिक आंदोलन के पुनरुद्धार को जारी रखा।
1915, the Second Battle of Ypres began, marking the first large-scale use of poisonous gas in World War I.
1921 में सुभाष चंद्र बोस ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित करने हेतु इंडियन सिविल सर्विस से इस्तीफा दिया।
In 1977, for the first time in history, optical fiber was used for commercial telephone transmissions, marking a major milestone in communication technology.
और सन 2016 में भारत सहित 170 से अधिक देशों ने संयुक्त राष्ट्र में पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य वैश्विक जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना है।
And yes, moving on to some deaths and births. 1724, birth of Immanuel Kant, a German philosopher whose works in fields like aesthetics and metaphysics have made him an important and influential personality in Western philosophy. And 1916, birthday tribute to Yehudi Menuhin, an astonishing violin prodigy who influenced generations of string players. Menuhin was born in New York of Russian Jewish parents, immigrants to America. As a young man, Yehudi Menuhin went to Paris to study under violinist and composer George Enesco. Besides working with several European and American composers, Menuhin also had a strong association with Pandit Ravi Shankar, which began with their 1966 album West Meets East. And besides music, Menuhin was a yoga enthusiast who introduced yoga to the West through his friendship with the influential yoga expert B.K.S. Iyengar. Menuhin arranged for Iyengar to teach abroad in London, Switzerland, Paris and other places, and this was the first time that many Westerners had been exposed to yoga. You're listening to a Mozart piece conducted by Menuhin.
और श्रोताओं, आज ही के दिन जन्म हुआ था भारतीय सिनेमा जगत में बी.आर. चोपड़ा का। एक ऐसे फिल्मकार के रूप में इन्हें याद किया जाता रहेगा, जिन्होंने पारिवारिक और सामाजिक फिल्में बनाकर लगभग 5 दशक तक सिने प्रेमियों के दिलों में अपनी खास पहचान बनाई। नया दौर हो यह वक्त, हमराज, बाबुल और बागवान जैसी जीवन में रची बसी कहानियों को दर्शाती बी.आर. चोपड़ा की फिल्में आज भी सिने प्रेमियों के दिल और दिमाग पर अमिट छाप छोड़ती है। तो आइए सुनते हैं फिल्म वक्त से ये प्यारा सा गीत, जिसे लिखा था साहिल लुधियानवी ने और आवाज आशा भोसले ने।
कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी। कौन आया, किसके आने की खबर लेके हवाएं आई, किसके आने की खबर।
उनकी ज्यादातर फिल्में किसी न किसी सामाजिक मुद्दे पर आधारित थीं। फिल्म जगत में दिए गए उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें फिल्मों के सबसे बड़े सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। तो आइए सुन लेते हैं फिल्म गुमराह से ये प्यारा सा गीत।
चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो।
बहुत ही खूबसूरत आवाज महेंद्र कपूर की। और स्वास्थ्य खराब रहने के कारण 80 के दशक में बी.आर. चोपड़ा ने फिल्मों का निर्माण करना कुछ कम कर दिया था, लेकिन इस दौरान 1980 में इन्होंने इंसाफ का तराजू और 1982 में फिल्म निकाह का निर्माण किया। सलमा आगा ने अपनी आवाज से इस गीत में 4 चांद लगाए।
सुनी सुनी सीधा सता
वर्ष 1985 में बी आर चोपड़ा ने दर्शकों की रग को पहचानते हुए छोटे पर्दे की ओर रुख किया। दूरदर्शन के इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा कामयाब रहे सीरियल महाभारत के निर्माण का श्रेय बी आर चोपड़ा को ही जाता है। 96% दर्शकों तक पहुंचने के साथ ही सीरियल ने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया, तो बी आर चोपड़ा के लिए ये एक महान उपलब्धि थी।
And friends, we talked about Menuhin, violin expert. We are going over to another violin virtuoso. Today is his death anniversary. Virtuoso from South India, Vidwan Lalgudi G. Jayaraman, who was taught by his father, and by the age of 12, he had advanced to accompanying other musicians. The violin was just a shadow instrument up till then, but then at the hands of Lalgudi Jayaraman, it became a singer itself. Called the Lalgudi Bani, a style of playing built on lyrical phrasing, voice-like gamakas or musical embellishments and melodic clarity. Beyond breaking ground as a performer, Jayaraman composed hundreds of varnams, kritis and thilanas that became instant standards. Jayaraman was also a Carnatic music's most powerful diplomat. After Menuhin heard him play at the 1965 Edinburgh Festival, he gifted his own Italian violin to Jayaraman. It was one of the greatest honor for Jayaraman, and of course, Western classical violinists in history acknowledging that a different and equally rigorous musical tradition had just spoken to him, note for note. Besides playing Carnatic classical, Jayaraman had also collaborated with Hindustani musicians. A very interesting jugalbandi with Amjad Ali Khan called South Meets North was recorded in 1983. And besides receiving innumerable awards from all over India and the West, he was also awarded the Padma Bhushan by the Government of India in 2001. You are listening to a Thillana in Raag Desh, composed and played by Lalgudi Jayaraman.
और श्रोताओं, आज ही के दिन जन्म हुआ था भारत की प्रसिद्ध अभिनेत्री, गायिका और फिल्म निर्माता कानन देवी का। उनका मूल नाम कानन बाला था। भारतीय सिनेमा जगत में कानन देवी का नाम एक ऐसी शख्सियत के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने न केवल फिल्म निर्माण की विधा बल्कि अभिनय और पार्श्व गायन से भी दर्शकों के बीच अपनी खास पहचान बनाई थी। बगैर प्रशिक्षण हासिल किए कानन ने गायन की दुनिया में प्रवेश किया और अभिनय के क्षेत्र में अपनी खास पहचान बनाई। वे पहली बांग्ला कलाकार थी जिन्हें भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए 1976 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
And Farhad, the first song had, you know, great classical lines in that song. Beautiful it was. Anyway, from those great songs, we moved to a country singer-songwriter. Arkansas, U.S. saw a birth this day in 1936. Glenn Campbell was an American TV host, actor, singer-songwriter, guitarist. Regarded as one of the most successful musicians ever, Campbell sold more than 45 million records, which included a double platinum album, four platinum albums, and 12 gold albums in a career spanning 50 years. And of course, in 2014, he became the subject of a documentary titled Glenn Campbell, I'll Be Me. And let's listen to this very, very popular big hits of his smash, Rhinestone Cowboy.
I've been walking these streets so long, singing the same old song. I know every crack in these dirty sidewalks of Broadway, where hustle's the name of the game, and nice guys get washed away like the snow and the rain. There's been a load of compromising on the road to my horizon, but I'm gonna be where the lights are shining on me, like a
और श्रोताओं, अब हम याद कर रहे हैं हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार श्रवण कुमार राठौर को। भारतीय सिनेमा की ख्याति प्राप्त संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण में से एक थे ये। संगीतकार नदीम श्रवण की जोड़ी को पूर्ण रूप से पहचान फिल्म आशिकी से मिली। ये फिल्म अपने समय की सुपरहिट थी और फिल्म का संगीत आज भी काफी लोकप्रिय है।
आशिकी के लिए जाम की जरूरत है जैसे, जाम की जरूरत है जैसे बेखुदी के लिए। हाँ, एक सनम चाहिए आशिकी के लिए।
उनका पहला असाइनमेंट भोजपुरी फिल्म दंगल के लिए था, जिसका सॉन्ग काशी हिले पटना हिले काफी पॉपुलर भी हुआ। हिंदी फिल्म के लिए उन्होंने पहली बार मैंने जीना सीख लिया में काम किया था। 1985 में दोनों ने मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, सचिन डैनी और सुलक्षणा पंडित समेत 10 स्टार्स के लिए म्यूजिक कम्पोज किया। इसके बाद दोनों ने साजन, दिल है कि मानता नहीं, सड़क सैनिक, दिलवाले, राजा हिंदुस्तानी, फूल और कांटे और परदेश जैसी फिल्मों का संगीत दिया और ये सभी एल्बम काफी हिट हुए। तो आइए सुन लेते हैं फिल्म फूल और कांटे का ये प्यारा सा गीत कुमार सोनू और अलका याग्निक की आवाज में।
And friends, birthday of Hollywood actor Jack Nicholson. From being a stage and B-movie actor, Jack went on to become one of Hollywood's most versatile actors and a huge star. Three-time Academy Award-winning legendary actor has in his six-decade career delivered performances that have become iconic. His notable performances include One Flew Over the Cuckoo's Nest and As Good As It Gets.
और श्रोताओं, अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमें कहना होगा आपसे अलविदा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज विश्व पृथ्वी दिवस है, तो आपसे यही अपील है कि आज ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, अपने आसपास की जो जगह है उसको साफ सुथरा रखें, ताकि जो आने वाला जो कल है वो आपके लिए ही जो है वो बेहतर साबित होगा।
यस, स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नाउ इज समाचार प्रभात, अ हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।
नमस्कार, नमस्कार।